ओम शांति। एक विशेष टॉपिक पे चर्चा है, इस समय का, इस सुंदर अवसर का संपूर्ण लाभ कैसे उठाएं। सोचेंगे सभी, केवल सुनने के लिए तैयार ना हो जाओ, डायरी में जब कहूं तब लिखना। अब सबको सोचना है, सुंदर अवसर है, किस चीज का? ठीक बोल रही, बोलो। भाग्य बनाने का सुंदर अवसर है, जो चाहे बोलो आगे, बाबा से ले लेने का, जिसे थोड़ा थोड़ा मांगते थे वो सब कुछ देने आ गया है। स्वर्णिम अवसर है सब कुछ ले लेने का। ब्राह्मणों में जो गहन चिंतन नहीं करते, उनको इन बातों का कभी ख्याल नहीं रहता। सवेरे उठते हैं, रात को सो जाते हैं, थोड़ी बहुत सेवा की, योग लगाया, पूरा हो गया दिन। चिंतन करें क्या मिल रहा है, अब चिंतन कर ले मेरे साथ, क्या मिल रहा है? बोलेंगे, बोलो। 21 जन्मों की बादशाही का योग लगता है, बादशाही से क्या लेना देना भाई, अपना ऐसे ही ठीक है, नहीं टेंशन क्यों लेनी है, पहले ही बहुत टेंशन है, बादशाही पाने की टेंशन। क्या विचार माताओं का, यही है ना जो मैंने कहा, ठीक बात है ना? ये माताएं उत्तर नहीं दे रही, नहीं कुछ पाना है क्या है? अरे बोलो, मैं आपको क्लास करानी आज मुझे, क्या पाना है? ऐसे नहीं जान बचेगी, उत्तर देना पड़ेगा। क्या पाना है? भगवान को पाना है। ये कह रही भगवान को पाना आपको मिल गया, इनको मिलवा देना, पा लिया, ठीक है। सूक्ष्म रूप से चिंतन करें, आपका बच्चा पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, सफलता नहीं मिल रही है, आप बिजनेस कर रहे हैं, पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पर ठीक टाइम पे सफलता नहीं मिलती है। आपके बच्चे ने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, इंजीनियरिंग कर ली, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लास्ट मोमेंट पे सफलता नहीं मिलती है, हो रहा है बहुत आजकल। कारण, सफलता का बीज इस समय डाला जाता है, नहीं डाला है तो द्वापर युग से हर जन्म में सफलता रोज चाहिए मनुष्य को। मैंने 21 जन्म की सफलता माने 21 बार, रोज सफलता चाहिए, चाहिए या नहीं? सवेरे उठने की सफलता, योग लगने की सफलता, मुरली में नींद ना आए, ये भी सफलता चाहिए या नहीं? सेवा की आपने, उसमें सफलता। यहाँ देखो अलौकिक में, लौकिक में भी यही, हर कदम पे मनुष्य को सफलता की जरूरत है। बीज कहाँ पड़ेगा? अब कितनी बड़ी चीज है, छोटी बात नहीं है, सफलता बहुत बड़ा जीवन का पहलू है। जो लोग सफल नहीं होते, उनसे पूछो कैसे प्यासे रह जाते हैं जीवन में, अशांति तनाव रह जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं भाग्य में सफलता क्यों नहीं है। दूसरी चीज, जो इस समय समय को सफल करेंगे, समय क्या करेगा? उन्हें सफलता प्रदान करेगा। जो इस टाइम बाबा की हर बात स्वीकार करके फॉलो करेंगे, अपनाएंगे। बाबा द्वापर से भी उनकी सुनवाई करेगा, उन्हें मदद मिलेगी। देखो कितने सुंदर अवसर हैं, विचार करो। जो इस समय सभी उलझनों से बाहर निकलकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे, द्वापर से भी उनकी मनोस्थिति श्रेष्ठ रहेगी। परिस्थितियों के ज्यादा वश नहीं होंगे वो, और जिनकी यहाँ भी स्थिति श्रेष्ठ नहीं वो परिस्थितियों के वश होते हैं। और सोचो क्या अवसर है संगम युग पर, बोलो भाई बोलेंगे अब। अविनाशी खुशी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। और बोलो क्या अवसर है। हाँ तकदीर की बात आ गई। और बोलो सर्व शक्तियां प्राप्त करने का, किसी भी जन्म में शक्तियों की कमी ना हो। देखो शक्ति क्या है, थोड़ा सा आजकल की जो चीजें हैं उनके आधार से आप देखो। आपके मोबाइल में एक हल्की क्वालिटी की बैटरी है, आपने उसे फुल कर लिया चार्ज, लेकिन वो 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती है। उसका कारण बैटरी की भी है, लेकिन उसका कारण ये भी आप उसे ज्यादा यूज करते हो। दूसरी बहुत सुंदर बैटरी है, एक बार चार्ज कर ली 2 दिन चल रही है, यूज भी कर रहे हैं, मिसयूज नहीं यूज कर रहे हैं। योग से आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। कितनी चार्ज कर लेते हैं हम, अभी ये कमजोर बैटरी और पावरफुल बैटरी भी यहां से बनेगी। जिसने अपनी बैटरी फुल चार्ज कर ली वो पावरफुल, जिसने थोड़ी सी की वो कमजोर बैटरी। उनके तन भी ऐसे रहेंगे, मन भी ऐसे रहेंगे, कार्य भी ऐसे ही चलेंगे। बैटरी चार्ज करने का सुंदर समय है। संसार का हाल तो बिगड़ता जा रहा है, एक खेल शुरू हो रहा है संसार में, जिसको बाबा कहते थे कभी। पता है वो कौन सा खेल शुरू हो रहा है, सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए। कर्मों के फल मिलने का खेल, बाबा के ये शब्द थे। सभी के हिसाब किताब चुकतू करने की गोडली मिशनरी बहुत सूक्ष्म होगी, अब वो शुरू हो गई। गोडली मिशनरी इंग्लिश का शब्द है। एक अभियान चलेगा ना, ये भी सबको शुद्ध करके वापस ले जाना होगा बाबा को। गॉडली मिशनरी भगवान का प्लान, तो वो शुरू हो गया है। अब आप देखेंगे 2-3 साल में, ज्यादा लंबा समय नहीं, कैसे लोग सजा पाते हैं, पा रहे हैं, शुरू हो गया। मानसिक रोगों के रूप में, मैं अभी बाहर था, कई लोग ऐसे देखने में आए कैसे सजा पा रहे हैं। उनको देखकर अंदर में प्रेरणा आती है जोरदार, इन्हें सकास दी जाए। सकास के अलावा कोई विधि नहीं है, क्योंकि कर्म उन्होंने किए हैं, फल भी उनको मिलना है। लेकिन हमारी सकास क्या करेगी, बोलो, हल्का करेगी, उनमें कुछ सहन शक्ति आ जाएगी, ताकि वो दुखों को सहन कर सके, जो उन्हें पीड़ा हो रही उसको वो सहन कर सके, सामना कर सके। ये खेल अब तेज होता जाएगा। तो हमें इस सुंदर समय का और सुंदर अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाना है। कहाँ से शुरू करेंगे फायदा उठाना, अमृत वेले से। कभी बाबा से इसी हॉल में अव्यक्त बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा, हंसी मजाक का प्रश्न था, बाबा सत्युग में भी जल्दी उठना पड़ेगा क्या। पहले तो बाबा मुस्कुराए के थक गए हो। जिनको सवेरे बहुत सुख मिलता है उनको उठना भारी लगेगा या आनंदकारी, वो इंतजार करेंगे ना जल्दी सवेरा हो। हम उठें, बाबा से रूरियान करें, उससे परम सुख प्राप्त करें, वरदान प्राप्त करें। और जिनको मजा नहीं आता वो सोचते हैं प्रभु जी ने ये मुसीबत कहां से डाल दी, सवेरे ही तो नींद आती थी अच्छी, अभी उठो योग करो। भिन्न भिन्न तरह के विचार हैं। तो सवेरे उठने से ही हम इस समय का और इस अवसर का पूरा फायदा उठाना प्रारंभ करें। सवेरे का समय स्वयं को चार्ज करने वाला हो जाए रोज। बाबा कहा करते थे, जिनका अमृत वेला अच्छा उनकी परिस्थितियां खत्म। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था सवेरे देवताओं के उठने का? बाबा ने कहा देखो मंदिरों में देवताओं को सवेरे 5 बजे उठा देते ना, घंटी बजाते हैं, तो 5 बजे तो उठेंगे ही देवता। ठीक है उन्हें योग नहीं करना इसलिए 4 बजे नहीं उठेंगे, पर 5 बजे तो उठेंगे। क्योंकि सत्ययुग में क्या होगा, उठना और सोना कैसा होगा? बड़ा सहज सा, मानो कोई थकान है, न भारी भोजन है, न पेट में गड़बड़ है, न सुस्ती है, न स्वप्न है, ये सब कुछ नहीं है ना वहां। यहाँ तो क्यों गड़बड़ है, किसी का भोजन हजम नहीं हुआ, किसी को नींद नहीं आई, किसी के घर में टीवी चल रही थी 12 बजे तक, सोने ही नहीं दिया बच्चों ने, किसी के घर में मेहमान आ गए थे, वहां ये समस्याएं नहीं है। तो कराटे खराटा भी एक समस्या है भाई, जिनको खराटे ज्यादा ही आते हो मैं एक विधि बता देता हूँ। सोते समय नाक में गाय का घी डाल लिया करो, एक दो ड्रॉप इधर, एक दो ड्रॉप इधर, ऊपर जाने दो, थोड़ा सिर ऊपर कर लो, उससे ठीक हो जाता है, और सिर दर्द भी ठीक होते हैं, माइग्रेन भी ठीक होता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो दूसरा फायदा समय का उठाएंगे मुरली से। मुरली हमारे लिए बहुत सुंदर गाइडलाइन है, मार्ग दिखाती है हमें, हमारे मन को रोज हल्का करती है। बल्कि सुंदर अनुभव क्या होने चाहिए रोज? मुरली सुनना माना, भगवान से मिलन करना। ठीक बात है या नहीं? मुरली ऐसे सुने कि बाबा से मिलन का अनुभव हो, मुरली ऐसे सुने कि मुरली सुनने के बाद आत्मा परम सुख में वापिस लौटे। और मधुबन में ही ये सबसे सुंदर अवसर है, क्योंकि बाहर जब लोग होते हैं, आप लोग भी होते हैं, भाग दौड़ के आएंगे, आधा काम छोड़ के आएंगे, 7 बजे मुरली सुनी तो 7:30 पहुंचेंगे, होता है या नहीं? 8 बजे भाग रहे हैं पानी भरना है किसी को, तो वहां तो एकाग्रता होती नहीं, यहाँ न पानी भरना, न खाना बनाना, न बच्चों को स्कूल भेजना। इसलिए यहाँ बहुत एकाग्र चित्त होकर इस सुंदर अवसर का लाभ उठाएं। क्या न हो मुरली में, क्या न हो? नींद न हो, सुस्ती न हो। कई लोगों की ये समस्या रही है कि हम तो योग के लिए सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन मुरली में नींद आती है, आएगी आएगी, इसलिए 3:30 उठो, 4 उठो, मुरली का भी रस मिले पूरा पूरा। सवेरे योग कर लिया हो और फिर मुरली में भी नींद, और 11 बजे के बाद काम में भी नींद, हंसेंगे ना लोग, कैसे योगी हैं, सोते रहते हैं, उन्हें क्या पता आप 3 बजे उठे थे, भगवान से मिलन का सुख लिया था, वो तो देखेंगे सो रहे हैं ऑफिस में बैठकर। तो अपनी दिनचर्या को ठीक से सेट करें। क्या नहीं करेंगे संगम युग का पूरा फायदा उठाने के लिए? 5 पॉइंट बताएंगे। पहले भाई, अलबेलापन नहीं, बहने नहीं, क्या नहीं करेंगे? नींद नहीं करेंगे ये नहीं, मेरा प्रश्न है क्या नहीं करेंगे? और कुछ सोचो, परदर्शन, दूसरे को देखने में ही संगम बिता दिया, दूसरे के अवगुण दिख रहे हैं, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, इन्होंने ये क्यों किया, क्या क्यों मैं दूसरों को देखने में संगम युग बीत न जाए, अटेंशन देना है। और क्या नहीं करना है भाई लोग, और थोड़ा अभी अमृत वेले और मुरली के बाद आ जाओ, व्यर्थ से मुक्त, संगम पर भी जो व्यर्थ में फंसे रहे उनका तो पूरा कल्प ही बोलो व्यर्थ जाएगा, पक्का समझ लें। संगम पर व्यर्थ में रहना माना पूरे कल्प को व्यर्थ कर देना। सतयुग त्रेता में भी छोटे बनेंगे और द्वापर युग के बाद तो मजदूरी करनी पड़ेगी, गरीबी में जीवन पलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। व्यर्थ में रहना और न रहना अपने हाथ में है या नहीं, बोलो भाई लोग। आज मैं माताओं से नहीं पूछूंगा, भाई लोग बताएं, अपने हाथ में है। कईयों को व्यर्थ में बहुत रुचि होती है, व्यर्थ का विस्तार बहुत करते हैं, व्यर्थ से मन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। सबको पता रहना चाहिए व्यर्थ ज्यादा सोचने से आत्मा की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कोई सवेरे 2 बजे उठकर 6 बजे तक योग लगाए लेकिन सारा दिन व्यर्थ में रहे तो उसकी शक्तियां सब बहकर नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वयं को व्यर्थ से पूरी तरह बचाएं, ये अपने हाथ में है। व्यर्थ सुनने से बचाना, व्यर्थ सोचने देखने से बचाना, वही 3 बंदर बाबा जिनकी वर्णन करता है, 5 आ गए बाद में, उनसे स्वयं को बचाना है। और क्या नहीं करना है, हैं? अच्छे कर्मों को डिले नहीं करना, ये बहुत अच्छी बात है। शुभ संकल्प, अच्छे कर्म, यज्ञ सेवा, कोई पुण्य करने का संकल्प हुआ उसको डिले नहीं करना, देर नहीं करनी, उसमें अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी वो खाता खाता है ना, भगवान ने बैंक खोला है, याद है ना पिछली बार की मुरली, उसमें जमा कर देना है, अकाउंट बढ़ता चले। और क्या नहीं करना संगम पर, मुख से कटु वचन नहीं बोलने हैं, यह अज्ञानियों का लक्षण है, ये उनका लक्षण है जिनके अंदर कड़वाहट भरी है। अंदर कड़वाहट होगी तो ही तो कड़वे वचन निकलेंगे। जिन्होंने अपने चित्त को प्रेम और शुभ भावनाओं से भर लिया उनके मुख के बोल कड़वे नहीं हो सकते। क्यों? जैसे बोल हम दूसरों को बोलेंगे वैसे ही बोल हमें सुनने भी पड़ेंगे। अब सोच लें, हम बोलने में तो बड़ा आनंद लेते हैं, सुनने की शक्ति है। और ये भी सत्य है कि जो कड़वा बोलते हैं उनमें कड़वे वचन सुनने की शक्ति नहीं रहती, बोलने में शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कड़वे वचन बोलने से बड़ा नुकसान क्या है? नहीं और कुछ, दूसरों के दिलों को बहुत दुखाते हैं, और जो दूसरों के दिलों को दुखाते हैं उनके दिल, और बता दो आजकल की भाषा में, उनको दिल के रोग होते हैं, उनका दिल कमजोर होता है, उन्हें किसी की दुआएं नहीं मिलती, वह बददुआओं के पात्र हो जाते हैं। दिल दुखाने वालों को नींद की समस्या बढ़ती जा रही है। ध्यान देंगे सभी, जिन्होंने दूसरों के बहुत दिल दुखाए हैं उनका सूक्ष्म पापों का खाता भी विकराल होता जाता है और इनकी सजा बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण बनकर अगर दूसरों के दिल दुखाए हैं तो फल कितना बड़ा होता है, 100 से भी ज्यादा। बाबा ने इसी हॉल में कभी कहा था, 77 की मुरलियों में है, तुम्हें 63 जन्मों के पाप नष्ट करने में समय नहीं लगता, ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उनको नष्ट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि विकर्म अगर होते रहते हैं तो योग लगता नहीं है। पुण्य आत्माएं ही योगी बन सकते हैं। योग का सुख पुण्यों के सुख से जुड़ा रहता है, इसलिए बहुत ध्यान देंगे हमें अब और पाप नहीं करने, पहले ही बहुत हो गए हैं, भंडारे भरपूर हैं या कम है, भंडारे भरपूर हैं, इसलिए अब तो पुण्यों के भंडारे भरपूर करने हैं। क्यों करने हैं, मैं बाबा की एक बड़ी सूक्ष्म सी बात आपके सामने रख देता हूं, उसको जानकर सभी पुण्यों पर बहुत ध्यान देंगे। पुण्य बोल से भी होते हैं मीठे बोल, जैसे कड़वे वचन पाप का खाता बढ़ाते हैं, परिवारों में कैसा माहौल बना देते हैं कड़वे बोल, एक ही व्यक्ति कड़वा बोलता हो सबका सुख चैन खत्म, फिर कोई और उसे कड़वा बोल दे तो संघर्ष बहुत तेज, परिवारों में अशांति हो जाती है। अब सुने वो बाबा का महावाक्य, आप सबने नहीं सुने होंगे, यहाँ क्लास में मैं कभी कभी सुनाया है, तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, क्या हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी आत्माओं को मिलता है। विचार करेंगे हमारे पुण्य कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जड़े हैं, हम अस्तर बीज हैं, हमारा प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में फैलता रहता है, बहुत बड़ी बात है। हम पुण्य आत्माएं, हम पवित्र आत्माएं, इसका प्रवाह सारे कल्प वृक्ष में फैलता है, सभी धर्मों तक जाता है, इसलिए तुम्हें उनका फल भी पदम गुना मिल जाता है। देखो कितनी सुंदर गति है, सूक्ष्म तो है ही पर सुंदर भी। हम पुण्य कर्म, दुनिया में एक पुण्य कर्म करेंगे एक अच्छा फल मिलेगा, हमारा एक पुण्य कर्म पदम गुना अच्छा फल देगा, तो जो हमारा विकर्मों का प्रभाव रहता है जीवन पर वो हल्का पड़ जाएगा ना, बहुत एकदम खत्म जैसा होने लगेगा, इसलिए उससे हमारा योग अच्छा लगता है और योग से जो रहस्य विकर्म है वो तेजी से नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारा योग विकर्म विनाश करने के लिए नहीं, किस लिए होगा राजीव, सकास देने के लिए, संसार को मदद करने के लिए। मुरली में एक सुंदर पॉइंट आ रही है, बाबा पवित्र बनाने आते हैं, जो आत्माएं बहुत पवित्र बन जाती हैं, उनकी पवित्रता से ही प्रकृति पवित्र बनती है। देखो पवित्रता हम धारण करेंगे, सेवा कहां कहां तक होगी जो कोई मनुष्य सोच ही नहीं सकता, संसार के वैज्ञानिकों को जिसका आभास ही नहीं है कि ये भी होता है क्या, ऐसे ही पुण्य आत्माएं हम बनेंगे, योग युक्त आत्माएं बनेंगे, संसार का कल्याण होगा। जिन धर्मों में उग्रता ज्यादा बढ़ गई है, जिन धर्मों में मारामारी हिंसा बहुत बढ़ गई है, उनके चित्त शांत होंगे, तो हमारा योग विश्व कल्याण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस पर सभी बहुत ध्यान दें। अब हम अपने योग को विश्व कल्याण के रूप में परिवर्तित कर दें तो डबल फायदा होगा। हमारे विकर्म तो नष्ट होंगे ही, पर दूसरों को भी बल मिलता रहेगा। और उसके लिए एक सुंदर सीन बनाया करेंगे मन में। विधि सीख लें सभी। दो तरीके मैं बता रहा हूं बाबा के बताए हुए। हम जुड़े हैं बाबा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, उसकी किरणें आ रही हैं, और हमसे जुड़ी हैं संसार की करोड़ों आत्माएं। आत्माएं देखो, चारों ओर चमकती आत्माएं, रस्सियां जैसे सूक्ष्म धागे हमसे जा रहे हैं उनको, और ये धागे बंधन के धागे नहीं, वाइब्रेशंस। तो बाबा से आ रहे हैं, सर्वात्माओं को जा रहे हैं। बहुत अच्छा योग होगा। आधा मिनट ले लें बाबा से, 15 सेकंड दे दें, फिर 1 मिनट ले लें, 15-20 सेकंड दे दें। ये गेम करने लगे, योग बहुत पावरफुल हो जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी, मन कहीं भी भटकेगा नहीं। दूसरी विधि याद आ जाएगा आपको, बाबा का महावाक्य जो पुराने बैठे हैं, ग्लोब पर बैठकर, ग्लोब माना धरती का गोला, माताएं कुछ भोली बैठी उनके लिए पूछा मैंने, ग्लोब माना धरती का गोला, श्री कृष्ण को देखा ना गोले पर बैठा है, ग्लोब पर बैठकर बुद्धि बाबा से लगाकर परम धाम में, सब दिए थे परम धाम में, बाबा पर स्वयं को स्थिर करके यदि संसार को थोड़ी देर भी सकाश दोगे तो पुण्य पदम गुना जमा होगा। बाबा के महावाक्य व्यक्त, ये दो विधि अपनाएंगे तो पाप का बोझ हल्का होता जाएगा, पुण्य का प्रभाव बल बढ़ता जाएगा। जिन लोगों के घरों में, परिवारों में, अपने जीवन में विघ्न ज्यादा हो, बढ़ते जा रहे बहुतों के जीवन में, बीमारियां कड़ी आ रही हो, कई लोग तो ऐसे आते हैं विघ्नों ने उनको तबाह कर दिया है, काम धंधों में विघ्न, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न, बच्चे भी आजकल विघ्न पैदा कर रहे हैं, पढ़ते नहीं, मोबाइल पे रहते हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, उधर का विघ्न, बीमारियों के विघ्न। ऐसे में आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, ये दोनों प्रैक्टिस कर लें योग की, एक सवेरे एक शाम को, या दोनों सवेरे दोनों शाम को, आधा आधा घंटा, इससे मिलने वाला पुण्य विघ्नों को नष्ट करेगा। सभी माताएं अच्छी तरह सीख लें, विघ्नों का कारण होता है पास्ट के विकर्म, मूल कारण वही है, थोड़े स्वभाव संस्कार भी उसके कारण हैं, मनुष्य के और छोटी मोटी चीजें छोटे मोटे विघ्नों के कारण हैं, लेकिन जो बड़े विघ्न आते हैं उनका कारण मनुष्य के बुरे कर्मों का खाता ही होता है। चलते चलते ठोकर लगी, कुछ भी नहीं, मजे से जा रहे, ठोकर लगी, गिरे, हड्डी टूटी, हड्डी का ऑपरेशन होने लगा, ठीक से नहीं हुआ, बुरा हाल हो गया, 6 मास लग गए, कुछ भी नहीं था, सहज पूरा होना था, 6 मास लग गए, कुछ कर नहीं सके, कष्ट बहुत हुआ, चल नहीं सके, रोते रहे, सच्ची घटनाएं सुना रहा हूं। इसलिए अगर ऐसा आपको प्रतीत होता हो कभी कि विघ्नों ने परिवार को घेर लिया है, तो थोड़ा सा अपने को हटाकर विघ्नों से डिटैच करके आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को अच्छा योग अभ्यास, ये दोनों तरीके से कर लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, विघ्न आते हैं तो ज्यादा सोते हैं। बहन जी पूछे क्यों नहीं आजकल दिखाई देते, बहन जी समस्याएं बहुत हैं, इसलिए सोने को मन करता है। सोने से विघ्न हटेंगे या जितने विघ्न आए हम उतने ही पावरफुल बने। 3 बजे उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं, योग लगाएं, विघ्न घबरा के भाग जाएंगे। कई करते हैं ऐसा, कई भाई बहने करते हैं, मुझे बताते हैं, विघ्न आए हम तो जल्दी सोने लगे, 9 बजे 2 बजे उठने लगे, लगातार योग अभ्यास किया, बाबा के यज्ञ में सेवा करने लगे, 10-15 दिन में ही तो विघ्न साफ हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। जैसे काले बादल जीवन पर आए थे, सब छट गए। आप में से भी कईयों ने किया होगा, ये करना चाहिए। जब विघ्न उसके काले बादल चारों ओर से घेर लें, तो संगम युग पर हम अच्छी तरह सोच लें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए उसको फाइनली कर दे, नहीं जैसे कर दिया ना कुछ चीजों को, बाजार के रसगुल्ले नहीं खाने हैं, या कभी कभी चलते हैं जिसके चलते हो बताओ, विधि बताएंगे, हाथ उठाओ जिसके चलते हो थोड़े बहुत। नहीं भाइयों में, भाई तो चुपचाप मार लेते होंगे ना मोर्चा, कौन देखता है, आइसक्रीम तो चल जाती है। खैर तो जैसे वो चीज सदा के लिए छोड़ दी ना, कैंसिल कर दी जीवन से, ऐसे ही कुछ चीजों की अपनी लिस्ट बना लो, 2-4-5 बहुत ज्यादा नहीं, 5 ज्यादा ज्यादा, इनसे अब अपना कोई नाता नहीं। कौन क्या कर रहा है, नेट पे क्या क्या आ रहा है, यूट्यूब में क्या क्या माल आ रहा है, आधा झूठा आधी गंदगी, सच्चाई बहुत कम, उससे अपने को मुक्त रखना है। कई योगियों ने तो गलत कर दिया, 12-1 बजे तक टीवी पे सीरियल देख रहे हैं, अच्छी आ रही होंगी बताओ, मुझे पता नहीं कैसी आती हैं 12 बजे सीरियल, पर मुझे लगता है खराब ही आती होंगी। बताएंगे कोई अनुभवी, मैं ये नहीं कि आपने देखा ही हो, जो इस चीज में लगे हुए हैं क्या उनको बाबा का प्यार मिलेगा, दूर हो जाएंगे आप ही, क्योंकि सवेर तो उठने का प्रश्न ही नहीं है, साथ में नींद में स्वप्न भी वही आएंगे। सारा खेल बिगाड़ लिया है कईयों ने, मैं थोड़ा कह रहा हूं जानबूझ के, समझदार थोड़े ही सारे से समझकर मुक्त हो जाएं। और जिनका भाग्य ही खराब है वो तो कहेंगे क्या बोलते रहते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं, इन्हें क्या पता क्या मजा आता है, ये सभी तो कहेंगे ना, हमारी बात सुन के हमें भी कहेंगे इन्हें क्या पता भला। ठीक है हमें नहीं पता, पर ये तो पता है कि इससे जीवन खराब होता है। जिसके पास आए हैं, जिसे सब कुछ लेना है, उससे दूरी बढ़ती जाती है, मन का भटकाव बढ़ता है। और जैसे कि कई केस आते हैं, मुझे तो दया आती है उन युवकों पर, कहा अब संकल्प रुकते ही नहीं, हम तो दुखी हो गए, रोने लगते हैं, क्या करें, मन की स्पीड इतनी तेज हो गई है, 1-2-4 संकल्प ही बार बार आ रहे हैं, न सोने देते न चैन लेने दे रहे हैं, क्या करें। तब बड़ी दया आती है कि देखो जब करना था तब किसी की नहीं सुनी, माँ बाप भी कहते होंगे, बाबा भी कहते हैं, नहीं सुनी, अब जब उनका परिणाम सामने आ रहा है तो जीवन अति कष्टकारक हो रहा है। तो सभी लिस्ट बनाएंगे, इस अवसर का सुंदर पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, लोग उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमान। अवसर आया था, द्वार पर आया था तुम्हारे, तुमने मिस कर दिया, तुम इधर उधर लगे रहे, तुम कैसे बुद्धिमान हो। और जो अवसरों को पहचान कर उनका पूरा लाभ उठाते हैं, वही समझदार और बुद्धिमान कहे जाते हैं। हमारे पास तो सबसे सुंदर अवसर आया है, फिर से वहीं आ जाएं। कौन सा? भगवान सामने है, स्वर्ग की बादशाही हथेली पर लेकर खड़ा है। बाबा सीन दिखाया करते थे कभी, ताज तिलक दोनों हाथ में लेकर खड़ा है। बच्चे सामने बहुत हैं, कह रहा है आओ, सब आने का साहस नहीं कर रहे, आओ, ये ताज है, बोलो कौन पहनेगा, राज तिलक लगाता हूँ, सब साहस नहीं कर रहे। भगवान के सामने ऐसा नहीं कि कोई चालाकी से भागाएगा, वहां ये नहीं चलता। उसके वाइब्रेशंस में तो केवल वही आत्माएं खींच कर आएंगी जो योग्य होंगी। यहां तो चालाकी चलती है, वहां नहीं चलती। तो हम सभी पूरा जोर लगाएंगे, अंतिम बाजी चल रही है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्योंकि पता चलता रहता है बाहर जाने से, मैं जाता ही रहता हूं, अनेक लोग ढीले हो रहे हैं, अनेक बाबा के बच्चों में संशय उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक राह बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो राह नहीं बदल सकते वो अति ढीले और अलबेले होते जा रहे हैं। चलो अब यही जीवन है, दूसरा जीवन तो नहीं लेंगे, लेकिन सारी उमंग उत्साह जीवन से समाप्त कर ली है। और जिस ब्रह्मा जी ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह न हो वो क्या है? डेड है वो। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं रही जीवन में तो जीवन डेड है, मृत समान है। इसलिए बहुत लोग इस समय ये गलती कर रहे हैं और समय को नहीं पहचान रहे हैं। मैं बहुत ओपनली कह देता हूं, जैसे 1950 में यज्ञ में वैगरी पार्ट आया था, काबू में परीक्षा ली गई थी, वो वैगरी पार्ट नहीं था, वो परीक्षाओं का काल था। बाबा को परीक्षा लेके कच्चों को निकालना था, स्ट्रांग आत्माओं को, बहुत पावरफुल, बहुत निश्चय बुद्धि, जो बाबा का झंडा जगत में लहराए उनको चुनना था। इसलिए वो वैगरी पार्ट लाया गया था, परीक्षाओं का काल। अब ये पुनः परीक्षाओं का काल चल रहा है, इसमें बहुत फेल हो रहे हैं। अब वो बात नहीं है कि भोजन नहीं मिलेगा, अब है सूक्ष्म परीक्षाएं, निश्चय की परीक्षाएं, अब हैं निश्चय की परीक्षाएं, और आगे चलकर आएंगी मोहों की परीक्षाएं। अब जो निश्चय में ढीले हो जाएंगे वो बाबा की मदद से, उसकी शक्तियों से, उसके वरदान और दुआओं से वंचित रह जाएंगे। संशय आते ही ऊपर से हट गए, कनेक्शन टूटा, बल खत्म हुआ, खुद भी ढीले और बाबा की नजर भी इधर से हट जाती है। इसलिए सभी को संभलना है, दूसरों को देखकर ये सोच करके बाबा नहीं आ रहे। क्या बाबा को नहीं पता कि मैं नहीं आ रहा तो इनका क्या होगा? पता है या नहीं? हमसे ज्यादा पता है, फिर वो क्यों नहीं आ जाता? बहुत लोग कहते हैं ना, दूसरे के तन में आ जाए उसको आने में थोड़ा ही कोई दिक्कत है, पर वो नहीं आता। क्यों? पढ़ाया जीवन भर, परीक्षा लेगा या नहीं? आपके बच्चों ने पढ़ाओ पूरा साल, परीक्षा डिले की जा रही हो, टाली जा रही हो, मार्च में थी, मई में होंगी, मई आई, अगस्त में होंगी, अगस्त आया, दिसंबर में होंगी। आप परेशान होंगे या खुश होंगे कि अच्छा परीक्षा न हो रही हो? बोलो, माताओं का क्या विचार है? न हो परीक्षा बच्चों की, होनी चाहिए, तब तो बच्चे उमंग से पढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे। भगवान को भी सेलेक्ट करना है, उन्हें जो उसके विश्व को संभाल सके, दो युग तक संभाल सके, कोई आंख उठा कर न देखे। हीरे सोने से भरा हुआ होगा भारत, कोई लूटने ही नहीं आ सकता। ऐसी पावरफुल राजाओं की सिलेक्शन हो रही है, चुन रहा है बाबा, इसलिए परीक्षा ले रहा है। इसलिए भूल से भी संशय बुद्धि नहीं बन जाना, नहीं तो बहुत बड़ी मिसिंग हो जाएगी। जैसे तब लोग ज्ञान छोड़कर बाबा को छोड़कर गए थे, फिर बहुत पछताए, कईयों को बहुत कष्ट हुए। अब हम बाबा की शीतल छाया में रहें, उसके महान कार्यों को करते रहें, क्योंकि अगला पार्ट बहुत सुंदर होने जा रहा है, बहुत सुंदर जय जयकार का। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। ओम शांति।